हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। तुषार की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई, लेकिन वो जल्दी ही अपने आप को संभालते हुए बोला, चलो देखते हैं शेर कौन है और बकरा कौन और किसकी चढ़ती है बलि। तभी वेदांश ने अपने हाथों को धीरे से पीछे किया और अपने बाकी सुरक्षा गार्ड्स को इशारा किया। ये हल्का सा इशारा था, लेकिन उन्होंने समझ लिया कि अभी हार मानने का वक्त नहीं आया था। तुषार ने वेदांश के उस हल्के से इशारे को देखा, लेकिन उसे नज़रअंदाज कर दिया। तुषार हंसकर वेदांश का मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम कुछ भी कर लो, अब बहुत देर हो चुकी है। तुषार ने अपने हाथ में पकड़ी हुई गन को लोड किया और वेदांश के सिर से टिका दिया। तुषार की ऐसी हरकतों से वेदांश का गुस्सा बढ़ने लगा था। वो किसी तरह उसे बर्दाश्त कर रहा था। तभी उसके सिर बॉडीगार्ड ने उसे धीरे से सिर हिलाकर इशारा किया। ठीक उसी समय वेदांश ने अपने पैर उठाकर तुषार के पेट पर एक जोरदार लात मारी। बस यही वो मौका था जिसका वेदांश इंतजार कर रहा था। बिना देर किए उसने तेजी से तुषार के हाथ की गन को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया और उसे छीनने की कोशिश करने लगा, लेकिन तुषार की उंगली ट्रिगर पर ही थी। वेदांश काफी इरिटेट हो चुका था। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। तुषार पीछे मुड़कर देख नहीं पाया कि उसके खड़े लोग उसकी मदद के लिए क्यों नहीं आ रहे थे। वेदांश के सारे सिक्योरिटी गार्ड ने एक बार फिर से उन्हें ओवरपावर कर लिया था। वेदांश के अतिरिक्त आदमी वहां उनकी मदद के लिए आ चुके थे और अब वेदांश के लोग संख्या में ज्यादा थे। वेदांश और कुषार के बीच छीना झपटी जारी थी। उन दोनों में से कोई भी उस बंदूक को छोड़ने को तैयार नहीं था। गुस्से में तुषार ने बिना निशाना लगाए ही गन का ट्रिगर दबा दिया। गोली चलने की एक तेज आवाज हुई। वेदांश नीचे झुककर बच गया और उसने तुरंत ही तुषार का हाथ पकड़कर मोड़ दिया। तुषार दर्द से कराह उठा और उसकी गन जमीन पर गिर पड़ी। वेदांश उसकी तरफ बढ़ पाता इससे पहले ही पीछे किसी के जमीन पर गिरने की आवाज हुई, जैसे कोई इंसान नीचे गिरा हो। वेदांश ने पीछे मुड़कर देखा और उसे अंबिका जमीन पर गिरी हुई नजर आई। वेदांश तुषार को छोड़कर तुरंत ही अंबिका की तरफ भागा। अंबिका ने अभी भी अपनी शादी का जोड़ा पहना हुआ था। उसके शरीर में गोली लगी थी, लेकिन कहां पर, ये वेदांश को समझ नहीं आया। लेकिन वहां अंबिका के आसपास का पूरा फर्श उसके खून से लाल हो चुका था। ये देखते ही वेदांश जोर से चीखा, अंबिका! तुषार को काफी चोट आई थी और वो जमीन पर गिरा हुआ पड़ा था, लेकिन वो आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने देखा कि वेदांश का ध्यान उसकी तरफ नहीं था, इसलिए वो तुरंत ही आगे बढ़कर बंदूक उठाने लगा। लेकिन तभी किसी ने उसके हाथ पर अपना पैर रख दिया और तुषार की दर्द भरी चीख निकल गई। वो वेदांश का हेड बॉडीगार्ड था और उसने तुरंत ही तुषार को पकड़ लिया और वहां से ले जाया गया। वेदांश की माँ भी भागते हुए वहां आ गई। वो पहले ही अपने कमरे की खिड़की से ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन वो अपने कमरे के अंदर वेदांश के दो बॉडीगार्ड्स के प्रोटेक्शन में थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंबिका को जमीन पर गिरते हुए देखा, वो खुद को रोक नहीं पाई। वहां आकर उन्होंने पहली बार अपने बेटे को इतना डरा और घबराया हुआ देखा। इस वक्त वेदांश ने अंबिका का सर अपनी गोद में रखा हुआ था और उसके हाथ को कसकर अपने हाथों में पकड़ रखा था। वेदांश अंबिका को बेहोश होते देखकर बहुत घबरा गया था। अंबिका के सीने और कंधे के बीच में गोली लगी थी और वहां से खून निकल रहा था, जिसकी वजह से उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं। वेदांश लगातार उसके गाल पर थपथपाते हुए उसका नाम लेकर पुकार रहा था। वेदांश ने कांपती हुई आवाज में कहा, अंबिका, आंखें, आंखें खोलो अपनी, ये क्या किया तुमने और क्यों आई तुम यहाँ पर, क्यों? अंबिका के होंठ हल्के से हिले और उसकी आंखों के सामने धुंधला सा वेदांश का चेहरा नजर आया, लेकिन वो कुछ भी बोल पाती उससे पहले ही उसकी पलकें पूरी तरह से बंद हो गईं और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वेदांश चीखा, नहीं! उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी माँ उसके नजदीक आई और उन्होंने वेदांश की तरफ देखते हुए कहा, क्या कर रहा है तू, उसे अस्पताल लेकर जा, क्या चाहता है तू, तेरे कर्मों की सजा एक और मासूम को अपनी जान देकर चुकानी पड़े। वेदांश की माँ ने भले ही ताना मारते हुए ये बात कही, लेकिन वेदांश को जैसे एकदम से होश आया। उसने तुरंत ही अंबिका को अपनी गोद में उठा लिया और तेज आवाज में चिल्लाया, गाड़ी निकालो, हमें हॉस्पिटल चलना है अभी, कुछ नहीं होगा अंबिका को, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, उसने अपनी गोद में उठाई हुई अंबिका के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। वेदांश की माँ भी उसके पीछे आई, क्योंकि उन्हें पता था वेदांश की हालत ठीक नहीं है। ऐसे में किसी को तो उनके साथ होना ही चाहिए था और वो भी यही चाहती थी कि अंबिका को कुछ ना हो। मन ही मन इसके लिए वो भगवान से प्रार्थना भी कर रही थी। वेदांश भागता हुआ गाड़ी तक आया। एक बॉडीगार्ड ने उसके लिए दरवाजा खोला और ड्राइवर के साथ एक बॉडीगार्ड पहले ही आगे पैसेंजर सीट पर बैठ चुका था। वेदांश ने अंबिका का सर अपनी गोद में रखते हुए पीछे बैक सीट पर उसे लिटाया और खुद एक किनारे पर बैठ गया। उसकी माँ ने आगे पैसेंजर सीट पर बैठे हुए बॉडीगार्ड से कहा, तुम बाकी बॉडीगार्ड्स के साथ दूसरी कार में आओ, मेरा वेदांश के साथ जाना जरूरी है। उनकी बात सुनते ही वो बॉडीगार्ड तुरंत ही कार से बाहर निकल गया और वेदांश की माँ उसकी जगह पर बैठ गई। लेकिन वेदांश का इन सब चीजों की तरफ ध्यान नहीं था। उसके दोनों हाथ अंबिका के खून से लाल हो चुके थे और अंबिका की बॉडी ठंडी पड़ती जा रही थी, इसलिए उसने तुरंत ही ड्राइवर को चलने के लिए कहा और ड्राइवर ने भी तुरंत कार स्टार्ट कर दी। अंबिका की तरफ देखते हुए वेदांश बड़बड़ाते हुए बोला, नहीं, इस बार नहीं, इस बार मेरे किए की सजा किसी को नहीं चुकानी होगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। वेदांश बड़बड़ाते हुए धीमी आवाज में ये सब कुछ बोल रहा था, लेकिन आगे पैसेंजर सीट पर बैठी हुई उसकी माँ का ध्यान उसकी तरफ ही था, इसलिए उन्होंने आसानी से वेदांश की बात सुन ली और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, प्लीज इस बच्ची की जान बचा लेना। इस बार मेरे बेटे के कर्मों की सजा किसी और को मत देना। मैं अपनी बेटी को तो नहीं बचा पाई, लेकिन अगर ये जिंदा रहेगी तो हो सकता है मेरा बेटा सही रास्ते पर आ जाए। मैंने पहली बार उसे किसी के लिए इतना घबराते देखा है। कुछ ही देर में उनकी कार अस्पताल के बाहर आकर रुकी। वेदांश ने स्टाफ और स्ट्रेचर के इंतजार किए बिना तुरंत ही अंबिका को अपनी गोद में उठाया और अस्पताल के अंदर आने लगा। वो उसका अपना ही हॉस्पिटल था और इसीलिए उसे किसी ने भी रोकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सब उसका नेचर अच्छी तरह से जानते थे और उसे डरते भी थे। वेदांश अंबिका को लेकर इमरजेंसी वार्ड की तरफ आया, उसे पता था और तुरंत ही वो इमरजेंसी रूम के अंदर आ गया और वहाँ पर खाली पड़े बेड पर उसने अंबिका को लिटाया और फिर इधर उधर देखने लगा। उसे वहाँ पर स्टाफ के एक दो लोग और एक नर्स नजर आए तो वेदांश फिर से तेज आवाज में चिल्लाया, डॉक्टर, डॉक्टर अब तक क्यों नहीं आए? जाओ और जाकर हमारे हॉस्पिटल के सबसे बेस्ट डॉक्टर को बुलाओ। जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू करो, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। वेदांश ने अंबिका की तरफ इशारा करते हुए कहा और नर्स तुरंत ही वहाँ से भागकर डॉक्टर को बुलाने के लिए चली गई। वेदांश जब तक वहाँ बैठकर पास ही खड़ा रहा, उसने अंबिका का हाथ अपने हाथों में कसकर पकड़ रखा था और अंबिका के चेहरे की तरफ ही देखने लगा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, अंबिका की आंखें बंद थीं और वो बेजान लग रही थी। वेदांश ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसे आज ही अंबिका को इस हालत में देखना पड़ेगा, जबकि आज ही उनकी शादी हुई थी।
ये सब कुछ सोचते हुए वेदांश ने गहरी सांस ली और कुछ ही सेकंड बाद डॉक्टर वहां आ गए और उन्होंने तुरंत ही ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, क्योंकि वेदांश से कोई भी सवाल करने की हिम्मत डॉक्टर के अंदर भी नहीं थी। लेकिन अंबिका को गोली लगी देखकर डॉक्टर के मन में भी सवाल आ गए और वो इस बारे में पूछना चाहते थे, लेकिन पहले उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया। वेदांश को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। वेदांश ने अंबिका का हाथ धीरे से छोड़ा और बेड पर लग दिया। फिर आखिरी बार उसकी तरफ देखते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया। उसके मन में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन सबसे पहले वो अंबिका को ठीक और सही सलामत देखना चाहता था। एक नज़र भर कर उसने अंबिका की तरफ देखा और फिर इमरजेंसी वार्ड के दरवाजे के बाहर जाकर खड़ा हो गया, जहां पर उसके बॉडीगार्ड और उसकी माँ पहले से ही खड़े हुए थे। टू बी कंटिन्यूड। क्या अंबिका बच पाएगी और कैसे लगी उसे गोली? क्या कर रही थी वो वहाँ पर? क्या लगता है आप लोगों को, वो बेचारी सच में कुछ ज्यादा ही अनलकी है? ऐसी इतने लोगों के बीच गोली सीधा जाकर उसे ही लग गई, वो भी अनजाने में, क्योंकि वो तो निशाने पर भी नहीं थी, है ना? किसी को अंबिका के लिए बुरा लग रहा है? वैसे जो भी हो, आप लोग भी प्रेयर कर सकते हो उसकी सलामती के लिए, शायद बच जाए। वैसे क्या एक और डेथ के लिए तैयार हो आप लोग? सॉरी, बट कुछ भी हो सकता है, इसलिए हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए आप लोगों को।